पेरिस, वो शहर जिसे शायद दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्माया गया है, आज हम इसी गहरे ताल्लुक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पेरिस और सिनेमा का ये रिश्ता कैसे बना?
जी बिल्कुल, और ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है।
सही,
पेरिस तो आप कह सकती हैं सिनेमा की जाए पैदाइश भी है और जिद्द तराजी का मरकज भी रहा है हमेशा से।
तो आइए वहीं से शुरू करते हैं, बिल्कुल इब्तिदा से। 28 दिसंबर 1895, पेरिस, एंटवान लुमियर कि वो पहली अवामी फिल्मी नुमाइश।
जी, वो तो एक तारीखी लम्हा था।
लेकिन क्या ये कहना ठीक है कि जॉर्ज मेलियस ने इसे एक आर्ट फॉर्म बनाया, मतलब कहानी सुनाने का जरिया?
यकीनन, लुमियर ब्रादरान की फिल्में तो ज्यादातर आप कह सकती हैं रोजमर्रा जिंदगी की झलकियां थीं, एक तरह की दस्तावाजी फिल्में।
अच्छा,
मेलियस वो पहले थे जिन्होंने ये समझा कि कैमरा सिर्फ हकीकत नहीं दिखाता, ये तो जादू भी कर सकता है, कहानियां सुला सकता है। उन्होंने ही तो पेरिस के करीब मॉन्ट्रॉयर ने दी यूरोप का पहला फिल्म स्टूडियो बनाया और स्पेशल इफेक्ट्स और बाकायदा कहानी को फिल्म का हिस्सा बनाया। वो पहले डायरेक्टर थे, पहले आप कह सकती हैं फिल्मी जादूगर थे।
और ये जिद्दत का सिलसिला पेरिस में रुका नहीं, सुना है पहली बोलती फिल्में भी वहीं 1927-28 के आसपास आईं।
जी हाँ बिल्कुल, और इसी दौर में फिर फ्रांसीसी हकीकत पसंदी यानी फ्रेंच रियलिज्म जैसी तहरीकें भी सामने आईं।
अच्छा, वो क्या था?
वो फिल्में, मतलब आम आदमी की जिंदगी, समाजी मसाइल, उनको ज्यादा सच्चाई से दिखाने की कोशिश कर रही थीं।
फिर आती है 1960s की दहाई और नोवेल वैग, फ्रेंच नई लहर। इसने तो जैसे फिल्म बनाने का अंदाज ही बदल दिया है ना।
ओह बिल्कुल, नोवेल वैग एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। उसने वो जो हॉलीवुड का या रिवायती फ्रांसीसी सिनेमा का भारी भरकम निज़ाम था ना, उसको चैलेंज किया।
कैसे, मतलब क्या मुख्तलिफ था?
नौजवान डायरेक्टर्स थे, गुडार्ड, ट्रूफॉन वगैरह, उन्होंने हाथ में कैमरा पकड़ा, असली लोकेशंस पर, खासतौर पर पेरिस की गलियों में शूटिंग की। कहानियां भी गैर रवायती होती थीं, फिल्म ज्यादा जाती, ज्यादा फौरी लगने लगी।
और इसका असर?
असर तो आलमी सतह पर हुआ, आज भी फिल्म साज इससे मुतासिर हैं, उसने फिल्म की जुबान ही बदल दी।
और टेक्नोलॉजी में भी पेरिस आगे रहा, डिजिटल दौर में भी?
जी बिल्कुल, यूरोप की पहली अवामी डिजिटल सिनेमा प्रोजेक्शन वो भी पेरिस में हुई, 2 फरवरी 2000 को। फिलिप बिनात का नाम इसमें अहम है।
अच्छा,
तो ये बात दिलचस्प है कि कैसे, मतलब बिल्कुल शुरू से लेकर आज के डिजिटल दौर तक पेरिस सिनेमा की तकनीकी तरक्की में भी कहीं ना कहीं मरकजी रहा है।
अब जरा उन फिल्मों की बात करते हैं जिन्होंने पेरिस को अमर कर दिया। मुझे फौरन याद आती है ओटिल दू नॉर्थ, 1938।
अरलेती का वो मशहूर डायलॉग,
वही एटमोस्फियर एटमोस्फियर एस्क्यूजे इन ग्यूल्ड एटमोस्फियर। हालांकि सुना है फिल्म ज्यादातर स्टूडियो में बनी थी।
जी, लेकिन कैनाल से मार्टिन के किनारे वो होटल आज भी एक पहचान रखता है।
ये फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं, ये पेरिस के मुख्तलिफ अदवार की अक्कासी हैं।
जैसे कब्जे का दौर,
हाँ, ला ट्रावर्से द पारी 1956 में ब्लैक मार्केट और वो मुश्किल वक्त दिखाया गया, या फिर ले डर्निये मेट्रो 1980 जो थिएटर की दुनिया में छुपी जिंदगियों को सामने लाती है।
और आजादी का जश्न, पारी ब्रूलती हूँ
1966।
जी, उसमें वो आजादी का जोशो जज्बा है।
और आज का पेरिस, मुझे शाकें शेर शोशा 1996 याद आ रही है, वो शहरी तन्हाई और फिर भी कम्युनिटी की तलाश।
बहुत खूबसूरत फिल्म है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा जिस फिल्म ने पेरिस की एक खास तस्वीर बनाई वो लिफाब्ल्यू दस्तां दामेली पुलां थी।
हाँ, एमिली,
हाँ,
मॉनमार्ट्रे तो जैसे उस फिल्म के बाद और भी मशहूर हो गया।
बिल्कुल, एक ख्वाबों जैसा रोमानवी पेरिस। ये दिलचस्प है ना कि फिल्में किस तरह एक जगह की शबीहा बनाती हैं जो कभी कभी हकीकत से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है।
और सिर्फ फ्रांसीसी नहीं, बैनुल अक्वामी फिल्म साज भी पेरिस के दीवाने रहे।
टू ले मोंद दी आई लव यू
1996 फ्रांसीसी,
मूलन रूज
2001 फ्रांसीसी,
द विंची कोड
2006।
जी, फिरिस्त बहुत लंबी है।
और पेरिस जो तैम
2006 फ्रांसीसी,
वो तो खास थी, अलग अलग डायरेक्टर्स, अलग अलग कहानियां पेरिस के मुख्तलिफ हिस्सों में।
अगर हम इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो पेरिस की ये जो आलमी कशिश है ना, ये सिर्फ मशहूर इमारतों की वजह से नहीं है।
अच्छा, तो फिर
वहाँ की तारीख, सकाफत और एक तरह का रोमानवी वादा जो इस शहर से वाबस्ता है, ये एक ऐसा कैनवस है जिस पर हर कोई अपनी कहानी रंगना चाहता है।
फिल्मों की फेहरिस्त तो वाकई बहुत ही वसी है। क्लासिक ले कैथ्रोसों खू फ्रांसीसी,
آبوت سوفل،
فرانسیسی، جو نوویل ویگ کی پہچان ہے.
جی،
پھر انسیپشن جیسی بڑی بین الاقوامی فلمیں جس نے پیرس کے آرکیٹیکچر کو خوابوں کی دنیا بنا دیا، اور اینیمیشن میں رٹتوئی،
ہاں، جس نے پیرس کے کھانے کی شہرت کو بھی چھوا. ان میں سے بہت سی فلمیں فورم دا زیماج فرانسے کے کلیکشن پیرسین میں دیکھی جا سکتی ہیں.
یہ تنوع ہی بتاتا ہے کہ پیرس صرف پس منظر نہیں رہا.
بالکل نہیں، وہ کرداروں، کہانیوں اور مختلف فلمی انداز کے لیے ایک مسلسل انسپریشن ہے.
اور یہ سلسلہ آج بھی زور و شور سے جاری ہے. میں نے پڑھا کہ پیرس میں روزانہ اوسطاً 10 شوٹنگز ہوتی ہیں. یہ تو بہت زیادہ ہے.
جی، اعداد و شمار یہی بتاتے ہیں. 2013 میں کوئی 113 فیچر فلمیں اور 116 ٹیلی پروڈکشنز وہاں بنی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عوامی مقامات پر جیسے سڑکیں، پل وغیرہ، وہاں فلم بندی کی اجازت مفت ہے.
کیا واقعی مفت؟
جی ہاں، بس جو پارکنگ وغیرہ کے انتظامی اخراجات ہیں وہ دینے ہوتے ہیں.
یہ تو حیران کن ہے.
البتہ جو تاریخی مقامات ہیں جیسے میوزیم، یادگاریں یا خاص باغات، وہاں باقاعدہ فیس ہوتی ہے اور وہ اچھی خاصی ہو سکتی ہے.
اچھا،
جیسے کسی بڑے میوزیم میں فیچر فلم شوٹ کرنی ہو تو ایک دن کی فیس ہزاروں یورو میں ہو سکتی ہے. اس سے شہر کو سالانہ تقریباً 5 سے 7 لاکھ یورو کی آمدنی بھی ہوتی ہے.
تو مطلب شہر انتظامی طور پر بھی فلم انڈسٹری کو سپورٹ کرتا ہے؟
بالکل، یہ اس کی سینما سے جو گہری وابستگی ہے اسی کا تسلسل ہے.
تو خلاصہ یہ ہوا کہ پیرس صرف سینما کی جائے پیدائش ہی نہیں، بلکہ یہ جدت کا مرکز، بے شمار لازوال کہانیوں کا گھر، اور آج بھی دنیا بھر کے فلم سازوں کے لیے ایک میگنیٹس ہے.
جی، اور آخر میں ایک سوال شاید چھوڑنا چاہوں گی سوچنے کے لیے.
جی،
کہ جس طرح فلموں نے پیرس کو بار بار پیش کیا ہے مختلف رنگوں میں، کیا اس نے خود پیرس شہر کے بارے میں ہمارے تصور کو کسی خاص طریقے سے ڈھال دیا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلموں والا پیرس ہمیں اصل پیرس سے بھی زیادہ سچا لگنے لگتا ہے؟